नमस्कार भारत 29 अप्रैल दिन शुक्रवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान बेचने की अमरीकी योजना खटाई में पड़ी। उत्तराखंड में हजारों हेक्टेयर जंगल आग से तबाह, 5 लोगों की जानें भी गईं।
वर्तमान स्थिति का मुकाबला कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, इसलिए राज्य को अग्नि आपदा पीड़ित घोषित करना अति आवश्यक है।
प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विवाद बढ़ा और वॉशिंगटन डायरी में सुनिए, क्या एक दूसरे को माफ करने से ही भारत और पाकिस्तान का भला हो सकता है?
क्या पता, एक दूसरे से माफी मांग लें तो शायद आप और हम भी भूल सकें। कुछ ज्यादा ही सिंपलिस्टिक सा नुस्खा है ना, लेकिन क्या पता किसी जड़ी बूटी की तरह काम कर जाए।
होगा सब कुछ, लेकिन सबसे पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, हरिता कांडपाल से। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान से होने वाले F-16 विमानों के खरीद सौदे में किसी भी तरह की मदद देने से रोक लगा दी है। अब पाकिस्तान को विमान खरीदने की स्थिति में पूरा खर्च खुद उठाना होगा। अमरीका किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं कर पाएगा। वहीं पाकिस्तान के लिए विदेशी सैनिक वित्तीय सहायता कोष के तहत करीब $75 करोड़ के प्रस्ताव पर भी कांग्रेस ने रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने अलप्पो की स्थिति को विनाशकारी बताया है। अलप्पो में ताजा हमला डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अस्पताल पर हुआ है, जिसमें मरने वालों की संख्या 55 तक पहुंच गई है। आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ है। व्हाइट हेलमेट संस्था के कार्यकर्ता अब भी मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेडिसिन ऑफ फ्रंटियर्स संस्था ने कहा है कि कम से कम 14 मरीज और 3 डॉक्टरों की इस हमले में मौत हो गई है। इनमें शहर में बचे आखिरी बच्चों के डॉक्टर की भी मौत हो गई है। MSF के प्रवक्ता सैम टेलर ने हमलों को लेकर चिंता जाहिर की। हम बहुत डरे हुए हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का डर है कि ये आगे भी होगा। ये पहली बार नहीं है कि इस एक साल में 7वीं बार डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के समर्थन वाले अस्पतालों पर हमला हुआ है, और कई ऐसे अस्पतालों पर भी हमला हुआ है जिनसे MSF नहीं जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं पर हमले तो भयंकर हैं। आज के युग यानी कि 2016 में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही भयावह है। ये थे सैम टेलर के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी सेना ने अफगानिस्तान में पिछले साल एक अस्पताल पर हमले के सिलसिले में 16 सैनिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला किया है। कुंदूस में मेडिसिन ऑफ फ्रंटियर्स के अस्पताल पर पिछले साल अक्टूबर में हुए हमले में 42 लोगों की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि जिन पर कार्रवाई की गई है उनमें एक वरिष्ठ सेना अधिकारी है और बाकी विशेष सुरक्षा दस्ते के सैनिक हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ के चुनाव रणनीतिकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए हैं। जाओ आओ सेंटेना को खासकर 2010 और 2014 के चुनाव में जिल्मा रूसेफ में जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में वित्तीय गड़बड़ी में घूस लेने के आरोप में सेंटेना इनकार कर चुके हैं। पेट्रोब्रास भ्रष्टाचार मामले में ब्राजील के 50 नेता जांच के दायरे में हैं। इनमें कांग्रेस के निचले सदन के नेता भी शामिल हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने सैन बर्नार्डिनो में गोलियां चलाकर 14 लोगों की हत्या करने वाले सैयद फारूक के भाई को गिरफ्तार किया है। सैन बर्नार्डिनो गोलीबारी कांड में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों का गोलीबारी कांड से सीधा संबंध नहीं है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं BBC की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। कार्यक्रम की शुरुआत उस बड़ी खबर से जो आ रही है अमेरिका से। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान बेचने की अमेरिकी योजना खटाई में पड़ गई है। ये वही डील है जिस पर भारत की नाराजगी की परवाह किए बिना अमेरिका ने इसे हरी झंडी दी थी और कहा था कि ये लड़ाकू विमान आतंकवाद से लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस डील पर सवाल उठने लगे हैं? चलिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन में BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास और मामले को विस्तार से समझते हैं। तो जी ब्रजेश, सौदा पक्का हो गया था, सीनेट से भी मंजूरी मिल गई थी, अमरीकी सरकार भी डील को लेकर अपना मन बना चुकी थी, तो फिर अब कहां गड़बड़ हो गई?
देखिए, हुआ ये है कि बिक्री अभी भी हो सकती है। अमरीकी प्रशासन कह रहा है कि हम बेचने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो तीन विमान बेचे।
जी ब्रजेश जी, आवाज साफ नहीं आ रही है हम तक, आवाज साफ नहीं आ रही, बहुत ही व्यवधान है आवाज में। हम आपसे आगे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे और इस खबर पर हमारी नजर बराबर बनी रहेगी। ये खबर है कांग्रेस से जुड़ी। कांग्रेस ने फैसला किया है कि जो अमेरिका को इस डील के तहत मदद दी जानी थी इन विमानों को खरीदने के लिए, जो मदद की दरकार थी, कुछ पैसा पाकिस्तान को खर्च करना था इस डील में और कुछ मदद अमेरिका की तरफ से मिलने वाली थी, उस मदद पर अब अमेरिका ने रोक लगा दी है। इस बारे में हम आगे संपर्क करने की कोशिश करेंगे ब्रजेश उपाध्याय से। फिलहाल रुख भारत का करते हैं और सियासी उठापटक से अलग बात करते हैं उस अहम कामयाबी की जो कल भारत ने अपने नाम की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कल अपना 7वां नेविगेशन सैटेलाइट छोड़ा। जानकार मानते हैं कि इससे भारत की अमरीकी GPS पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और पड़ोसी देश भी भारतीय सैटेलाइट से फायदा उठा पाएंगे। इसे समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने विज्ञान मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला से बात की।
भारत ने अपनी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से एक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया और उसको अपनी कक्षा में पहुंचा दिया। ये हिंदुस्तान की नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन का 7वां सैटेलाइट था और इससे ये पूरा कॉन्स्टिलेशन जो है अब पूरा हो गया है। तो 7ों नेविगेशन के सैटेलाइट कक्षा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को नाविक का नाम दिया। नाविक मतलब नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये बिल्कुल जैसे अमरीकी GPS है, उसी का एक काउंटर पार्ट है। लेकिन अमेरिकन GPS जो कि आपके और हमारे मोबाइल फोन पे बराबर मिलता है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है और उसको बाय लॉ हिंदुस्तान किसी भी तरह से वॉर के टाइम पे नहीं यूज कर सकता और उसमें एक इनबिल्ट इनएक्यूरेसी होती है। उसी कारण से हिंदुस्तान को ऐसा करना था कि अपना नेविगेशन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैयार करना पड़ा। 3 साल के अंदर हिंदुस्तान ने पूरे 7ों सैटेलाइट को लॉन्च किया और 7वां सैटेलाइट जो है वो कक्षा में पहुंचा दिया गया।
पल्लव जी, ये बताएं कि भारत के गांव देहात में रहने वाले, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे फायदा क्या मिलेगा?
ये कई तरह से हमारे और आपके काम आता है। इससे हर स्मार्टफोन पे आने वाले टाइम में इसका सिग्नल मिलेगा और जिसके पास भी स्मार्टफोन होगा, और क्योंकि ये हिंदुस्तान का सिग्नल हिंदुस्तान के ऊपर है और इसकी एक्यूरेसी हिंदुस्तान के ऊपर अमेरिकी सिस्टम से ज्यादा बताई जा रही है, तो जब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो हर आम आदमी जो भी GPS यूज करता है, आजकल गाड़ी में यूज करे या स्मार्टफोन में यूज करे, उसमें बहुत उपयोगी होगा। 100 स्मार्टफोन पे GPS की तरह से आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं और उसके लिए क्या सबसे सफल रास्ता होगा वो बताता है, उसकी बताने की मदद करता है। दूसरा, जब वॉर का टाइम होता है तो वेपन्स को एक्यूरेसी से पॉइंट करना और टारगेट करना भी इस सिस्टम से बड़ा आसान हो जाता है। हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, इसरो का मानना है कि इसमें लेस देन 20 मीटर एक्यूरेसी है। ऐसा करने वाला हिंदुस्तान तीसरा देश बन गया है। अमेरिकी GPS सिस्टम, रशियन ग्लोनास सिस्टम, ये दोनों कारगर हैं। इसी तरह से चाइनीज सिस्टम है एक बिडो करके और एक यूरोपियन यूनियन का सिस्टम है गलीलियो, वो अभी पूरी तरह से कारगर नहीं है।
आप बता रहे हैं कि अमेरिका का अपना सिस्टम है, रूस का अपना सिस्टम है, चीन का अपना सिस्टम है, और उनसे भारत का ये तंत्र, ये प्रणाली किस तरह अलग है और कितनी ज्यादा भरोसेमंद है उनके मुकाबले?
किसी भी दूसरे देश के सिस्टम पे आप कभी 100% रिलाय नहीं कर सकते। जब चाहे दूसरा देश उस सिस्टम को स्विच ऑफ कर सकता है, आपको डिनाय कर सकता है सिस्टम। दूसरा, बाय लॉ जैसे GPS है, उसको आप वॉर टाइम में यूज नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान को ऐसा सिस्टम चाहिए था जो हिंदुस्तान के अपने कंट्रोल में हो। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का सिग्नल है ये हिंदुस्तान से 1500 किलोमीटर दूर चारों तरफ बॉर्डर में मिलेगा, तो उससे पूरा साउथ एशिया कवर हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि वो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको ये सिग्नल मुहैया कराएंगे।
ये थे पल्लव बागला, बता रहे थे कि भारत के सातवें नेविगेशन उपग्रह से क्या क्या फायदा होगा। उधर उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग ने हजारों हेक्टेयर जंगल को तबाह कर दिया है। विभिन्न जगहों में अब तक 5 लोगों की मौत भी जंगल की आग से हो चुकी है। करीब 10 लोग विभिन्न जगहों पर आग से झुलस गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पशुधन को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। राज्यपाल के पॉल ने उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से बढ़ रही आग की घटनाओं पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के साथ ही और अधिक लोगों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल के मध्य से शुरू हुई आग की अब तक की 500 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। आग से 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का जंगल बर्बाद हो चुका है, जिसमें से करीब 400 हेक्टेयर सिविल या वन पंचायत का जंगल है। 30 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य भी आग की भेंट चढ़ चुका है। आग की घटनाओं में बढ़ोतरी ने प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। वन विभाग का दावा है कि उसके इंतजाम पर्याप्त, यथोचित और यथास्थान है। उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक राजेंद्र कुमार,
तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमारे सभी DFOs को हमारे हेडक्वार्टर पर फायर अलर्ट्स भेज रही है। फायर अलर्ट्स का ये मतलब है कि जहां फायर लगती है वो सैटेलाइट के थ्रू देखकर फायर की सूचना हमें वो देते हैं। उस सूचना को हम हेडक्वार्टर से, उसमें तो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड GPS रीडिंग होती है, उस GPS रीडिंग के आधार पर हम ईमेल वन में कहां आग लगी है, उस वन का नाम, कंपार्टमेंट का नाम, रेंज का नाम, इसकी सूचना हम सब प्रभागीय वन अधिकारियों को भेज रहे हैं। ये भी फायर को डिटेक्शन करने में, फायर को बुझाने में ये बड़ी हमारी सहायक सिद्ध हो रही है।
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और शासन की बागडोर राज्यपाल के पॉल के हाथों में है। उन्होंने आग बुझाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस आपदा पर नियंत्रण के लिए अवैध कटान में संलिप्त शरारती तत्वों पर शिकंजा कसने के साथ ही जंगल से सटी आबादी द्वारा कूड़ा जलाने, वन क्षेत्र से गुजरने पर जलती बीड़ी, सिगरेट फेंके जाने और अच्छी घास के लालच में जंगल जलाने जैसी गतिविधियों के दुष्परिणामों के प्रति जनता को जागरूक करना होगा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जंगल की आग पर चिंता जताते हुए राज्यपाल को 6 सूत्री सुझाव भेजे हैं। बकौल रावत, ये आग भी एक आपदा की तरह है।
नॉर्मल जो मानक हैं, उन मानकों के तहत वर्तमान स्थिति का मुकाबला कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, इसलिए राज्य को अग्नि आपदा पीड़ित घोषित करना अति आवश्यक है और ये कदम तत्काल उठाया जाना चाहिए।
इस भयंकर वनाग्नि से निपटने के लिए उत्तराखंड के वन विभाग के संसाधनों के बारे में भी आपको बता दें, राज्य के प्रत्येक वन प्रभाग का फायर प्लान अनुमोदित किया गया है। जनपद का वरिष्ठ स्तर का अधिकारी नोडल नामित किया जाता है। प्रदेश स्तर पर अग्नि रोकथाम के लिए 40 मास्टर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। क्रू स्टेशन है 11,039, स्थायी सेट है 506, मोबाइल सेट है 99, हैंडसेट की संख्या है 1582, रिपीटर स्टेशन है 35, वॉच टावर है 94 और फायर वॉचर और श्रमिकों की संख्या है करीब 4,500। जिस राज्य का 65% भूभाग वन क्षेत्र हो, वहां ऐसे संसाधनों और संख्या से अंदाजा लग सकता है कि जंगल की आग का मुहावरा कैसे फैला होगा। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट में बागियों की सदस्यता को लेकर चल रही सुनवाई भी 9 मई तक के लिए टल गई। सूत्रों के मुताबिक बागियों के वकील को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर नैनीताल के जंगलों में लगी आग की वजह से बृहस्पतिवार को निर्धारित समय पर लैंड नहीं कर सका। शिव जोशी, BBC, देहरादून।
और अब हम लौटते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। खबर थी पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान बेचने की जो अमरीकी योजना है वो खटाई में पड़ गई है। संपर्क हो गया हमारा ब्रजेश उपाध्याय से वॉशिंगटन में। ब्रजेश जी, कुछ बुनियादी जानकारी तो हमने देने का प्रयास किया है, क्या कुछ ब्यौरा है बताइए।
देखें, पाकिस्तान को अमेरिका से जो 8 F-16 विमान खरीदने बेचने की बात हुई थी, उसका पूरा पैसा पाकिस्तान को अब अपनी जेब से खर्च करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने, अमेरिकी कांग्रेस ने इसके लिए किसी तरह की अमेरिकी मदद देने पर रोक लगा दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक उच्च अधिकारी ने BBC को बताया है कि ओबामा प्रशासन अभी भी पाकिस्तान को F-16 बेचने के हक में है, लेकिन उसके लिए अमरीकी पैसा नहीं खर्च किया जा सकता और इसलिए माना जा रहा है कि ये बिक्री अब खटाई में पड़ गई है, क्योंकि जानकारों के अनुसार पाकिस्तान इसके लिए पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं खर्च करेगा। और होता यह था अभी तक कि अमेरिका पाकिस्तान को फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग यानी विदेशी फौज को जो मदद दी जाती है, खास करके साझेदार देशों को, उसके तहत जो पैसा देता था उसमें से ज़्यादा, करीब ये पूरा खर्च करीब लगभग जो मेरे पास डेटा है उसमें से 70 करोड़ का ये सौदा होना था, और इसमें से लगभग 43 करोड़ पाकिस्तान से जाने, अमरीका देने वाला था और 27 करोड़ पाकिस्तान खर्च करता,
यानी एक बड़ी राशि अमरीका की तरफ से आनी थी जो अब वो देने को तैयार नहीं है।
जी हाँ, और कांग्रेस के सेनेट के जो एक काफ़ी मेंबर इस बिक्री के खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि F-16 विमानों का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं होगा, ये सिर्फ भारत के खिलाफ होगा, और भारत ने भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। पाकिस्तान ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आतंकवादियों पर निशाना लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
भारत के आपत्तियों की परवाह उस वक्त अमरीका ने नहीं की थी, तो जाहिर तौर पर भारत को राहत मिलेगी इस फैसले से अगर ये डील नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आप कितना बड़ा झटका इसको देख रहे हैं?
देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका, एक तरह से एक राजनीतिक झटका भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी कूटनीतिक मैकेनिज्म, जो कूटनीति तंत्र जो है वो इसमें लगा हुआ था, और उनके लिए ये बड़ी बात, पहली बड़ी बात ये हुई थी कि अमेरिका को सेनेट को किसी तरह से राजी करवा पाना कि F-16 विमानों की बिक्री हो, तो पहली वो सबसे बड़ी बाधा थी और लग रहा था कि ये अड़चन खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद सेनेट की ही विदेश मामलों की कमेटी के जो प्रमुख हैं सेनेटर बॉब कॉर्कर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम अमरीकी टैक्स दाताओं का पैसा नहीं इस्तेमाल करने, ये बेचने पर हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे इस मत के तहत, और क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो साझेदारी है, अमरीका के रिश्ते हैं, उस पर कांग्रेस में बहुत तीखे सवाल उठे हैं इस हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी, और काफी उनकी आलोचना हुई है, खासतौर पर हक्कानी नेटवर्क का साथ देने के लिए या फिर कई ऐसे दूसरे मामलों पर।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय आपका वॉशिंगटन से। नजर रहेगी इस बात पर कि कांग्रेस का जो ताजा फैसला है पाकिस्तान से, उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
और अब लौटते हैं भारत। दिल्ली में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर राजनीति नए सिरे से गर्म होती दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि मोदी की डिग्रियों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाए। मैंने बात की BBC संवाददाता जुबैर अहमद से और पूछा कि एक बार फिर अचानक मोदी की डिग्रियों की बात क्यों चलने लगी है।
देखिए, ये तो कोई नया विवाद नहीं है, पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्रीज के ऊपर विवाद खड़ा हुआ था जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक RTI एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या वहां से उन्होंने MA किया था, जैसा कि 2014 के चुनावी मुहिम के दौरान प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को ये डिक्लेयर किया था कि वहां से गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये बहुत पर्सनल है, एग्जाम्स और मार्कशीट्स वगैरह, तो हम इसको लोगों को नहीं बताएंगे। तो इस बार भी अभी अप्रैल के महीने में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक RTI एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें ये पूछा गया था क्या प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से BA किया है 1978 में, जो जैसा कि उन्होंने डिक्लेयर किया था इलेक्शन कमीशन के सामने, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी मना कर दिया। तो फिर PMO में भी इस तरह की याचिकाएं दाखिल की गई हैं, वहां से भी कोई जवाब RTI एक्टिविस्ट को नहीं मिला। तो उसके बाद अभी हाल में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना किया, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया कि सूचना आयुक्त को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के संबंध में जो भी सूचनाएं लोग मांग रहे हैं उनकी डिग्री के हवाले से, उनको बाहर किया जाए, उनको सार्वजनिक किया जाए, जैसा कि सूचना आयुक्त उनके बारे में पूछते हैं मुख्यमंत्री के बारे में दिल्ली के, और वो अब इन्फॉर्मेशन देने को बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई जानकारी जानना चाहे तो जाहिर है उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो इसी से ये मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है।
जी, केजरीवाल भी चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री से जुड़ी जानकारी है, उनकी डिग्री से जुड़ी जानकारी, वो सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक नेता को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था डिग्री के मामले में ही, और इसके अलावा जो स्मृति ईरानी हैं HRD मिनिस्टर, उनकी डिग्री को लेकर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं। तो ये जो पूरा विवाद है, ये उठता है फिर थोड़ा शांत हो जाता है, इसके पीछे की कुछ ठोस वजह है या सिर्फ राजनीति आप देखते हैं?
देखिए, इसमें एक बात तो साफ है कि किसी भी प्रधानमंत्री का या किसी भी मंत्री का डिग्री होल्डर होना जरूरी नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री के पास कोई डिग्री नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या उनकी जो उनका कद है वो नीचा नहीं हो जाता। लोग ये कह रहे हैं कि जो सूचना उन्होंने दी है इलेक्शन कमीशन को उसमें कितनी सच्चाई है ये सामने आनी चाहिए। बात इस बात की नहीं है कि डिग्री है कि नहीं है, बात यह है कि सच क्या है। और यही बात स्मृति ईरानी के हवाले से भी लोगों ने कहा, फर्क ये है प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी के डिक्लेरेशन में कि प्रधानमंत्री ने जब भी इलेक्शन से पहले डिक्लेयर किया है वो हमेशा उन्होंने ये बताया कि 1978 में उन्होंने बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया। वो स्मृति ईरानी के जो डिक्लेरेशन है वो दो अलग अलग इलेक्शन के समय में जो उन्होंने डिक्लेयर किया है अपनी डिग्री को वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक थोड़ा सा और शक की निगाह से लोग उसको देखते हैं स्मृति ईरानी की जो डिक्लेरेशन है। और जो जितेंद्र सिंह तोमर थे मंत्री दिल्ली के, उनके बारे में तो ये कहा गया कि उन्होंने डिग्री जो है वो फेक डिग्री जो है वो डिक्लेयर किया था और इसीलिए उनको अरेस्ट भी किया गया और उनको मंत्रिमंडल से निकाला भी गया।
ये थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। और कार्यक्रम में आगे बात होगी अखबारों की, लेकिन उससे पहले वॉशिंगटन डायरी। अमेरिका में इन दिनों चुनावी गहमा गहमी है और इस गहमा गहमी का हिस्सा भारत और पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक भी हैं, जिनमें से कई अब भी अतीत के गठरी को ढोए जा रहे हैं और इसी से उनकी सोच संचालित होती है। कैसे, सुनिए वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की डायरी में।
रेस्टोरेंट के अंदर टीवी फुल वॉल्यूम पर चल रहा है, पाकिस्तानी टीवी एंकर पूरे जोश के साथ चला रहा है और वहां बैठे दो साहब लगभग उतने ही जोशो खरोश के साथ मुर्गे की टांग नोच रहे हैं। नजर टीवी पर गड़ी हुई है और हड्डियां चबाते चबाते बीच में सियासतदानों पर लानत भी बरसा रहे हैं। यह है अमरीका के लिटिल पाकिस्तान की एक तस्वीर। अब चलते हैं मिनी इंडिया। मिठाई की दुकान में हिंदुस्तानी टीवी एंकर भी उतनी ही जोर से चीख चिल्ला रहा है। दुकान में चाय और मठरी के बीच मोदी जी की वाहवाही हो रही है। अमेरिका में न जाने कितने ऐसे लिटिल और मिनी मुल्क बसे हुए हैं, जो जहां से उखड़ा वहां के कुछ कतरे साथ ले आया और उन्हें यहां बिखेर कर अपने जड़ों को जिंदा रखने की कोशिश करने लगा। इन इलाकों की दुकानों में और अड्डों पर अमरीका कहीं से नहीं नजर आता। नवाज शरीफ और पैनामा पेपर्स की बात हो या भारत से नए घोटाले की खबर आ रही हो, यहां रहने वालों को उसकी पूरी खबर रहती है, कई बार तो शायद भारत पाकिस्तान में रहने वालों से भी ज्यादा। लेकिन यहां CNN, फॉक्स न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट नहीं दिखते, उर्दू, हिंदी और गुजराती अखबार नजर आते हैं। तो ऐसे में जब यहां अमरीकी चुनाव की बात करने पहुंचिए तो सवाल जवाब कुछ यूं होता है। जनाब, आप लोगों के लिए इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या है? बस जी, मुद्दा वुद्दा कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ जो ट्रंप साहब इमिग्रेशन पर बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को यहाँ आने से रोकने की बात कर रहे हैं, नौकरियाँ सिर्फ अमरीकियों को देने की बात कर रहे हैं, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? गलत बात है जी। तो वोट डालने जाएंगे या नहीं? पूरे जोश के साथ कहते हैं हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। तो वोट किसे देंगे? हैरी क्लिंटन को। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए सही है जी, पाकिस्तान का भला करेगी। फिर मुलाकात हुई दो भारतीय मूल के अमरीकियों से, जो पूरे जोर शोर के साथ ट्रंप का साथ दे रहे हैं। क्यों? जवाब आता है, क्योंकि वही है जो पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। थोड़ा और कुरेदने पर कहते हैं, ये ओबामा भारत भारत करता है, मोदी से गले मिलता है और पाकिस्तान को F-16 बेचता है। डेमोक्रेट्स ने आज तक भारत का भला नहीं किया, रिपब्लिकन जॉर्ज बुश ने जो हमारे लिए किया वैसा किसी ने नहीं। यानी चुनाव अमरीका में और मुद्दे भारत पाकिस्तान के। मुझे लगता है हम देसी वैसे भी बहुत सारा सामान लेकर चलने के लिए बदनाम हैं। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, आमतौर पर सबसे बड़े सूटकेस और गठरियाँ हमारी ही होती हैं। अक्सर एक्स्ट्रा बैगेज की फीस के लिए बकझक करते हम ही नजर आते हैं। और साथ में हम 70 साल से एक अलग बैगेज ढो रहे हैं, जो लगता है जैसे हर गुजरते दिन के साथ और भारी ही होता जा रहा है। अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो पुरानी गठरी भी ढो रहे होते हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों में एक भारतीय सिख और एक पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं, जसदीप सिंह और साजिद तर्रार। दोनों का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी कामयाब बिजनेस है उनका। बातचीत के दौरान जसदीप सिंह ने एक बात कही थी जो मेरे साथ रह गई। उन्होंने कहा, बंटवारे के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे पर बहुत जुल्म किए, लेकिन ज़रा सोचिए 70 बरस होने को आए लेकिन हमने एक दूसरे से उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। भारतीय जेल में बरसों बंद रहे और पुलिस की यातना से गुजरे एक अमरीकी कैदी ने अपनी किताब में एक बात लिखी थी, अगर मैं माफ़ नहीं करता तो भूल नहीं पाता, इसलिए मैंने उन पुलिस वालों को माफ़ कर दिया। सोच कर देखिएगा, 3-4 जंगें कर लीं, हर दूसरे तीसरे महीने बातचीत की कोशिशें भी कर लेते हैं, फिर एक दूसरे को कभी दिल्ली से तो कभी इस्लामाबाद से तो कभी UN के हेडक्वार्टर से खरी खोटी भी सुना डालते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। کیا پتا ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو شاید آپ اور ہم بھی بھول سکیں. کچھ زیادہ ہی سمپلسٹک سا نسخہ ہے نا, لیکن کیا پتا کسی جڑی بوٹی کی طرح کام کر جائے. برجیش اپادھیائے, بی بی سی نیوز, واشنگٹن.
اور اس کے بعد اب باری آ چکی ہے اخباروں کی. ہریتا اخباروں کے پلندے کے ساتھ موجود ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ہریتا اخبار آج کے؟
جی اشوک جی, کئی طرح کی خبریں آج پہلے پنے پر دیکھ رہی ہوں. اگستا ویسٹ لینڈ
ضرور ہوگا
جی, اس پر سوامی کی ٹپڑیوں پر گرمایا سدن. اگستا معاملے میں بھاجپا کا پھر سونیا پر حملہ, کانگریس کا پلٹوار, جن ستا نے یہ مکھیہ خبر چھاپی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو چھائی رہی ہے, ایک اور چینی اسنتشٹ کا ویزا رد, ہانگ کانگ کے کارکرتا کو بھی بھارت نے نہیں آنے کی انومتی
جی. اگلے کارکرم میں ہم اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں
جی. اور ایک اور خبر نئی دنیا نے بڑی پرمکھتا سے چھاپی ہے, بھارت نے برٹن سے کہا مالیہ کو ہمیں سونپے, شراب کاروباری کو نرواست کرنے کا انوروھ کیا ہے. اس کے علاوہ میڈیکل میں داخلے پر کورٹ کا فیصلہ ہے, نیٹ کا شیڈیول طے, 1 مئی اور 24 جولائی کو 2 چرنوں میں پریکشا ہوگی, یہ ایک ہی پریکشا کرنے کی انومتی مل گئی ہے. دینک بھاسکر نے چھاپا ہے کرگل کے سمے امریکہ نے مدد سے منع کیا تھا, آج بھارت نے بنا لیا اپنا جی پی ایس. یہ جو کل نیویگیشن سسٹم بنانے والا امریکہ اور روس کے بعد تیسرا دیش
بھارت, نیویگیشن اپگرہ جو لانچ کیا بھارت
جی, یہ بھارت تیسرا دیش بن گیا ہے. اس کے علاوہ ایک خبر انڈین ایکسپریس انگریزی اخبار نے چھاپی ہے, کیبنٹ میں پھیر بدل ہونے کی سمبھاونا ہے, 19 مئی کو ہو سکتا ہے کہ کیبنٹ میں بڑا پھیر بدل دیکھنے کو ملے,
نئے چہرے آئیں گے
جی, کچھ نئے چہرے آئیں گے. اور ایک منتری نے انڈین ایکسپریس اخبار کو بتایا ہے کہ 19 مئی کو نئی دلی میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے لوگوں سے, تو بڑے پھیر بدل پر رہے گی نظر سب کی
جی. چلیے, موقع مل سکتا ہے لوگوں کو
جی. اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو نوبھارت ٹائمز نے ایک چھوٹی سی خبر لی ہے, پروش ہونے کے آروپ میں نلمبن کے خلاف کیس جیت کر واپسی کرنے والی ایتھلیٹ دیوتی چند نے 100 میٹر دوڑ میں نیشنل ریکارڈ تو بنا لیا لیکن اولمپک میں کوالیفائی نہیں کر پائی ہیں.
چلیے, بہت بہت شکریہ تمام خبروں کی جانکاری کے لیے, اخباروں کی سمیکشا کے لیے. اور اب چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا کی طرف.
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں رجت چاندنا. آئی پی ایل 9 میں کل وانکھیڈے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز نے دی کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 6 وکٹ سے مات. یہ مقابلہ 2 کپتانوں کا رہا جہاں روہت شرما ایک بہتر کپتان ثابت ہوئے اور انہوں نے ایک سلجھی ہوئی اور نڈر پاری کھیلی. روہت نے نباد 68 رن بنائے اور انہوں نے 2 چھکے اور 8 چوکے جڑے. کرن پولارڈ نے انت میں وسفوٹک پاری کھیلی, انہوں نے 17 گیندوں میں نباد 51 رن بنائے جس میں 6 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے. ممبئی انڈینز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ لیا. کولکاتہ نائٹ رائڈرز کے کپتان گوتم گمبھیر نے ایک بار پھر اچھا پردرشن کیا جس کی مدد سے ٹیم نے 5 وکٹ کے نقصان پر 174 رنوں کا سکور کھڑا کیا. پورو بھارتی کھلاڑی نکھل چوپڑا نے کہا کہ تعریف کرنی ہوگی روہت شرما کی.
پچھلے میچ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو روہت شرما نے ہی 90 رن بنائے تھے کولکاتہ کے خلاف, ان کے گھر میں جا کے ایڈن گارڈن میں بہت بہترین پاری کھیلی تھی. دونوں ٹیموں میں کچھ نہ کچھ مقابلہ دونوں کپتانوں کے بیچ میں چلتا رہتا ہے. روہت شرما ناباد رہے, انت تک کھیلے اور پورا ساتھ دیا کرن پولارڈ کا کہ آپ جا کے اپنا گیم کھیلے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے.
ادھر انتراشٹریہ ہاکی فیڈریشن نے اس سال ہونے والی ریو اولمپک کے ادھیکارک میچ کاریکرموں کی گھوشنا کر دی ہے جس میں بھارتی پروش ہاکی ٹیم 6 اگست کو کوالیفائر ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنے ابھیان کا آغاز کرے گی. بھارتی پروش ٹیم کو اولمپک چیمپئن جرمنی, یوروپین چیمپئن نیدرلینڈز اور پین امریکن چیمپئن ارجنٹینا کے ساتھ ایک گروپ میں رکھا گیا ہے. ٹیم کا پہلا کڑا مقابلہ 8 اگست کو جرمنی سے ہوگا جس کے بعد اسے 9 اگست کو ارجنٹینا, 11 اگست کو نیدرلینڈز اور 12 اگست کو کناڈا سے بھیڑنا ہے. دوسری طرف 36 سال کے بعد اولمپک کے لیے کوالیفائی کرنے والی بھارتی مہیلا ٹیم 7 اگست کو جاپان کے خلاف اپنا ابھیان شروع کرے گی. بھارتی مہیلا ٹیم اس کے بعد برٹین سے 8 اگست, آسٹریلیا سے 10 اگست, امریکہ سے 11 اگست اور ارجنٹینا سے 13 اگست کو بھیڑے گی.
اور کاریکرم کے سماپن سے پہلے مکھیہ سماچار.
بی بی سی سماچار. امریکی کانگریس نے پاکستان سے ہونے والے F-16 ویمانوں کے خرید سودے میں کسی بھی طرح کی آرتھک مدد دینے پر روک لگا دی ہے. پاکستان کے لیے ودیشی سینک وتیہ سہایتا کوش کے تحت قریب 75 کروڑ ڈالر کے پرستاؤ پر بھی امریکی کانگریس نے روک لگا دی ہے. سنیکت راشٹر نے الپو کی استھتی کو وناشکاری بتایا. الپو میں ایک اسپتال پر ہوئے حملے میں مرنے والوں کی سنکھیا 55 تک پہنچ گئی ہے. امریکی سینا نے افغانستان میں پچھلے سال ایک اسپتال پر حملے کے سلسلے میں 16 سینکوں پر انوشاسناتمک کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. برازیل میں راشٹرپتی دلما روسیف کے چناؤ رنیتی کار کے خلاف بھرشٹاچار کے آروپ طے کیے گئے ہیں. بی بی سی سماچار.
तो नमस्कार भारत में अभी के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटी। अशोक कुमार को दीजिए अनुमति, ठीक एक घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा विश्व भारती, तो जरूर जुड़िए हमसे। नमस्कार।